चाहत के मना करने और तनु के इतने समझाने के बावजूद आहान चाहत को लेकर मुंबई पहुंच चुका था। वहां लैंड होते ही आहान ने तनु को अपने घर भेज दिया था और अब वो चाहत को लेकर अपने विला पर पहुंच रहा था। वहीं दूसरी तरफ आहान के विला पर अलग ही माहौल था। उसने पूरी ओबेरॉय फैमिली को अपने विला पर डिनर के लिए बुलाया था। वहां विजय और दामिनी भी आए हुए थे क्योंकि आहान ने उन्हें भी इन्वाइट किया हुआ था। उन्हें अपने सामने देखकर शिवानी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो आहान के फैसले के आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। आयुष और शिवानी जहां एक तरफ बैठे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनसे अलग विजय, दामिनी और अक्षरा बैठे हुए थे। आहान का मैसेज आया था कि उसे कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अक्षरा ने उन दोनों की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मैसेज में ये कहा था कि अनाउंसमेंट मुझे और डॉल से जुड़ी हुई है, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाला है? बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। विजय वहां आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चिढ़कर बोला, हाँ ठीक है, शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करने वाला था तो हम सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे और दामिनी को भी बुलाया है, जबकि वो हमें अपनी फैमिली नहीं मानता है। आहान को पूरी बातें याद नहीं है। फिलहाल के लिए उसे यही पता है कि आपका और शिवानी आंटी का डाइवोर्स हुआ है और आपने दूसरी शादी कर ली। ये नफरत की कोई खास वजह नहीं है, अक्षरा ने जवाब दिया। उसकी बात पर सहमति जताते हुए दामिनी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आहान को याद नहीं है कि आपने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया है। आज उसकी ये गुस्से की बीमारी आप ही की देन है। कितनी भी नाराजगी और गुस्सा क्यों ना हो, फैमिली हमेशा फैमिली ही रहती है। उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। हो सकता है इसी वजह से उसने आपको बुला लिया होगा। अक्षरा ने गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा, ये सब तो आहान के बाद यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक हम इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलते हुए उसकी नज़र आयुष और शिवानी की तरफ गई, जो तिरछी निगाहों से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए थे। उन्हें परेशान करने के लिए अक्षरा ने उनकी तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर आई विंक की। वहीं शिवानी और आयुष ने अक्षरा की इस हरकत को देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। आयुष ने शिवानी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, काम डाउन मॉम, अगर भाई ने बुलाया है तो किसी मकसद से ही बुलाया होगा। शिवानी ने आयुष का हाथ अपने हाथ से अलग किया और गुस्से में कहा, जो भी हो, आहान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ याद नहीं होगा, पर उसे अपनी माँ की तकलीफ तो दिखती ही होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है, मेरी आंखों के सामने। ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो उसे अपनी डॉल को लेकर करनी थी? मुझे ना इस डॉल शब्द से नफरत होने लगी है। उस चाहत की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हो गया और अभी अक्षरा डॉल बनाकर उसके सिर पर सवार हो रखी है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आयुष, और ना ही मुझे कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। जब तक आहान को कुछ याद नहीं आ जाता, ये ऐसा चलता रहेगा। विजय और दामिनी का वहां आना शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे तैसे करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए थी। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है इनका यहाँ आना। भाई को अगर ऐसी कोई मीटिंग रखनी ही थी तो होटल वगैरह में कर सकते थे। घर पर इन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? पिछले 5 दिन से भाई मुंबई से गायब है, ये भी नहीं पता कहाँ पर है, और अचानक आकर ये बम फोड़ रहे हैं। मॉम, मुझे डर लग रहा है कहीं वो अक्षरा से शादी करने की बात ना कह दे, आयुष ने हल्की घबराहट के साथ कहा। उसकी घबराहट जायज़ भी थी। शिवानी को पहले विजय और दामिनी की टेंशन हो रही थी, लेकिन जब आयुष ने आहान और अक्षरा की शादी की बात की तो उसका ध्यान उन दोनों पर चला गया। शिवानी ने परेशान स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आहान और अक्षरा की शादी नहीं होने दूंगी। अब तक मेरा बस नहीं चला था, वरना मैं इस लड़की को धक्के मारकर यहां से निकाल देती। इनकी शादी रोकने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी ना आयुष, तो मुझे मंजूर है। मैं आहान को इससे शादी करके बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन सबको आहान के आने का बेसब्री से इंतजार था। उन लोगों की आपसी बातचीत के बीच उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ये आहान की गाड़ी थी जो घर के मेन गेट में इंटर कर चुकी थी। इसी के साथ वो सब खड़े हो चुके थे। लगता है आहान ही आया है, मैं उसे लेकर आती हूँ, अक्षरा ने एक्साइटेड होकर कहा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगी। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ रहे थे। वैसे भी आहान को खुले में डिनर करने पसंद था, तो खाने का इंतजाम गार्डन एरिया में किया हुआ था। उन सबका अंदाजा सही था, आहान ही आया था। आहान ने गाड़ी से निकलकर उन लोगों को अपने इंतजार में खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी और उसने मन ही मन कहा, इतनी बेसब्री और बेताबी तड़प रहे हैं ना आप सब ये जानने के लिए कि मैं क्या बम फोड़ने वाला हूँ। डोंट वरी, जितना इंतजार किया है उस हिसाब से धमाके का इंतजाम भी कर रखा है आहान ओबेरॉय ने। उन सबको लगा कि आहान गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन अचानक आहान पैसेंजर सीट की तरफ गया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। फिर उसने अपना हाथ चाहत की तरफ बढ़ाया। चाहत गुस्से में उसे घूर रही थी। आहान ने सर्द निगाहों से चाहत की तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपना हाथ आहान के हाथ पर रख दिया था। जैसे ही चाहत गाड़ी से बाहर निकली, उन सबको एक जोरदार झटका लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अक्षरा के पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। चाहत आहान का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चाहत का वहां आना कम था क्या कि उसकी नजर चाहत के पेट की तरफ गई। उसका बेबी बम्प देखकर अक्षरा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। विजय और दामिनी भी हैरान थे। उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था जितना झटका अक्षरा को लगा था। इन सब में सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो था आयुष, जबकि शिवानी के चेहरे पर चाहत के लिए नफरत के भाव थे। आयुष दौड़कर आहान के पास गया। उसने चाहत का दूसरा हाथ पकड़ा और एक्साइटेड होकर बोला, तो आज इस घर की डॉल अपने घर में आ ही गई। वेलकम टू द डॉल हाउस भाभी। चाहत ने फीकी मुस्कुराहट के साथ उसे थैंक्स कहा और फिर आहान के साथ अंदर आ रही थी। उन सबके पास पहुंचकर आहान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इतना बुरा वेलकम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कम ऑन, बाप बनने वाला हूं मैं और आप सब लोगों के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आहान वो अक्षरा आहान से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी गुस्से में अपना आहान ने अपना हाथ ऊपर किया और सर्द आवाज में कहा, बाद में नकली डॉल, अभी तो डिनर बाकी है, सारे हिसाब किए जाएंगे और सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा। आहान ने मेन डोर बंद करवा दिया था ताकि कोई बाहर न जा पाए। आहान को कुछ भी याद नहीं आया था, पर वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे सब कुछ याद आ चुका हो। अब घबराने की बारी विजय और दामिनी की थी, जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। शिवानी उन सब में सबसे पीछे खड़ी थी, उसे सिर्फ चाहत का चेहरा ही दिखाई दिया था। जब आहान ने अपने बाप बनने की बात कही तो एक पल में शिवानी का गुस्सा गायब हो गया। वो जल्दी से आगे गई और उन्होंने चाहत को प्यार से सहला कर कहा, क्यों अपनी जगह किसी और को दे दी तुमने चाहत? मेरे बेटे के साथ साथ उसके बच्चे के साथ भी अन्याय करने चली थी तुम। बोलते हुए उनकी नज़र चाहत के पेट की तरफ गई।
आहान ने शिवानी को शांत करने के लिए उन्हें हल्के से हक किया और सहला कर कहा, मॉम आप खामखा मेरी डॉल पर गुस्सा कर रही हैं, जबकि यहाँ साजिश करने के लिए लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपको पता है, मुझे मॉम एक नई बात पता चली थी कि मैंने अपनी डॉल की मम्मा को मारा था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास सुपर पावर्स हैं जो मैं बिना कुछ किए ही डॉल की मम्मा को मार सकता हूँ। बोलते हुए आहान ने गुस्से से अक्षरा की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि आहान उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था। आहान प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, अक्षरा ने आगे आकर उससे बात करना चाही। आहान ने नामे सिर हिलाकर कहा, फिलहाल तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, नकली डॉल और मेरी डॉल को भी। एक पल के लिए मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं करता हूँ, पर अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। आहान ने सबका मुंह बंद करवा दिया था। आहान चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर गया। अंदर आते ही उसने चाहत से कहा, चेंज कर लो, डिनर के लिए बाहर चलते हैं। बाहर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी आहान? चाहत ने अंदर आते ही आहान से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि तमाशा अभी हुआ नहीं है, असली तमाशा लगना बाकी है, जो कि डिनर के बाद होगा। जस्ट वेट एंड एन्जॉय। आहान ने इतना ही कहा और फिर वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। वहीं चाहत परेशान हालत में वहाँ खड़ी थी। थकने पर वो बेड पर बैठ गई, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने पर उसके पैरों में दर्द होने लगता था। चाहत ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, जो करना है कीजिए आहान, लेकिन आपके तमाशा की सज़ा मेरे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। कुछ देर रेस्ट करने के बाद चाहत ने अपने कपड़े निकाले और चेंज करने लगी। चाहत को लगा आहान को आने में टाइम लगेगा, इसलिए वो रूम में ही चेंज कर रही थी। अचानक आहान कमरे में आया तो चाहत कपड़े पहनने जा रही थी। जैसे ही उसने आहान को देखा, तुरंत वो दूसरी तरफ पलट गई, तो वहीं आहान की नज़र उसके पेट की तरफ गई। चाहत को इस हालत में अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट फेज होने की वजह से उसका पेट काफ़ी आगे आ गया था। आहान चाहत की नज़र फिराने के बजाय उसके पास गया और उसे पीछे से हक कर लिया। उसने चाहत के पेट पर हल्के से हाथ रखकर कहा, घबराओ मत डॉल, दिल से प्यार किया था तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम, और मुझसे ही शर्मा रही हो। मुझसे मेरे इन इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को छीनने के लिए माफ़ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। बोलते हुए आहान ने चाहत का चेहरा अपनी तरफ किया, फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने चाहत के पेट पर अपना सिर रख लिया था। आहान का बर्ताव थोड़ा अजीब था, वो काफ़ी प्यार से पेश आ रहा था उससे। उसका बर्ताव देखकर चाहत मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आहान को सब याद आ गया और ये पहले की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जो शक चाहत के मन में था, ऐसा ही कुछ बाहर मौजूद हर एक शख्स के दिमाग में चल रहा था। आहान का बर्ताव देखकर यही महसूस हो रहा था कि उसे सब कुछ याद आ रहा है और वो बिल्कुल पहले की तरह बिहेव कर रहा था। क्या लगता है आहान को सब याद आ गया? अगर याद आ गया तो वो सबकी बैंड बजा कर रख देगा और सबको लाइन में लगा देगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर। पार्ट पढ़कर समीक्षा कर दिया करें प्लीज़।